الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر رمضان المبارک کے ان پرنور ساعتوں میں اپنے سلسلے درس حدیث شریف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عمله، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس درس حدیث میں ہم جس حدیث مبارک کو لے کر کے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث مبارک میں بیان کیا ہے ان چند صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں کہ جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے چند باتوں پر بیعت کی تھی. وہ باتیں کیا تھی، آئیے سماعت فرمائیے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ایک نامی گرامی انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. جنگ بدر ہو یا جنگ احد ہو، اس طرح کے مشاہد میں لڑائیوں میں یہ پیش پیش رہے. 72 برس کی عمر میں ان کا وصال ہوا اور یہ 34 ہجری تھی جس میں آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا. حدیث میں فرمایا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، وکان شہید بدرن، یہ بدر میں حاضر رہے. اور پھر فرمایا وہو احد النقبا لیلت العقبا، یہ لیلت العقبا کے نقیبوں میں سے ایک ہے. نقبا یہ نقیب کی جمع ہے جس کا معنی ہے سردار، یعنی کسی قوم کا کسی شخص کو سردار بنا دیا جائے تو اسے نقیب کہتے ہیں، اور اگر چند افراد کو سردار مقرر کیا جائے تو پھر یہ جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے نقبا. جیسے فرمایا گیا وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ نقیبوں میں سے وہ نقیب کہ جو لیلت العقبا میں مقرر کیے گئے تھے، ان نقیبوں میں سے، ان سرداروں میں سے ایک سردار مقرر ہوئے تھے. اور لیلہ رات کو کہا جاتا ہے، عقبا ایک گھاٹی ہے، مطلب گھاٹی کی رات. لیکن یہاں پر اس حدیث مبارک میں تاریخ اسلام میں یہ ایک تاریخی جگہ ہے اور تاریخی رات کا گویا کہ ذکر کیا جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارکہ تھا اوائل اسلام میں کہ جب موسم حج میں مختلف ممالک سے، مختلف مقامات سے جب قافلے آیا کرتے تھے تو میرے مصطفیٰ جان رحمت دعوت اسلام ان کو پیش کیا کرتے تھے. پہلے سال منا کی گھاٹی میں جہاں پر مسجد عقبا بنی ہوئی ہے، مدینہ منورہ سے 6 افراد تھے جنہوں نے رات کی تاریکی میں چھپ کر مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا تھا. ان میں سے ایک تھے حضرت ابو الحیثم بن تیہان، और दूसरे असद बिन जुरारा थे, और तीसरे औफ बिन हारिस थे, और चौथे राफे बिन मालिक थे, और पांचवें कुतबा बिन आमिर थे, और छठे जाबे बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अनहुम। ये छह हस्तियां थी जिन्होंने छुपकर इस्लाम मुस्तफा जान रहमत के हाथ पर कबूल किया था। और यही वो अहद है जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीखों में बैत अकबाए ओला के नाम से मशहूर है या जाना पहचाना जाता है। उन बारह अशखास ने बैत कर लेने के बाद नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में ये ख्वाहिश जाहिर की कि अहकाम इस्लाम की तबलीग के लिए कोई मुअल्लिम हमारे साथ भेज दिया जाए जो मदीना मुनव्वरा में चला जाए और वो जाकर के हमें तालीम देता रहे, इस्लामी अहकाम बताता रहे और हम इस्लाम के अहकाम पर अमल करते चले जाएं। तो जानते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन को साथ भेजा था? वो हजरत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु थे, उनको मेरे मुस्तफ़ा ने साथ भेजा था। फिर उससे जब अगला बरस आया तो 70 या 72 अफराद थे जो मदीना मुनव्वरा से मौसम हज के अंदर मुस्तफ़ा जान रहमत की खिदमत में आए थे, और उन सब लोगों ने भी मीना की इस घाटी में मुशर्रफ का इस्लाम होकर हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की। ये बैत तारीख इस्लाम में अकबाए सानिया के नाम से मशहूर है। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गरोह में से, उस जमात में से जो 70 या 72 अफराद थे, 12 लोगों को सरदार मुंतखब फरमाया था और 9 अशखास उनमें से कबीला खजरज से ताल्लुक रखते थे, और बकिया 3 जो हजरात थे वो कबीला औस के साथ ताल्लुक रखते थे। इन्हीं में से एक नकीब थे जिनका नाम उबादा बिन सामित रदी अल्लाह ताला अन्हो था, और इसी बात को बयान हदीस मुबारक में किया गया। वहुआ अहदुन नुकबा लैलतल अकबा, ये हजरत उबादा बिन सामित रदी अल्लाह ताला ने वो जाते पाक है जो घाटी की रात में मुंतखब होने वाले नकीमों यानी सरदारों में से एक सरदार है, और इस रात का नाम तारीख इस्लाम के अंदर लैलतुल अकबा है। हजरत उबादा बिन सामित रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابه من اصحابه, कहते हैं कि उस वक्त के जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की एक जमात थी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर यह इरशाद फरमाया बायउनी अला अल्ला तुशरिकु बिललाहि शैआ, इरशाद फरमाया कि तुम लोग मुझसे इन बातों पर बैअत करो। कौन सी बातें थी? सबसे पहली बात, मेरे हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला के साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराओगे। अला अल्लाह तुशरिकु बिल्लाहि शैया, इस बात पर बैअत की कि अल्लाह तबारक व ताला के साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराएंगे, और दूसरी बात चोरी नहीं करोगे, और तीसरी बात यह थी कि बदकारी नहीं करोगे, और चौथी बात यह थी कि अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे, और पांचवी बात यह थी कि अपने हाथ पांव के दरमियान में घड़ कर किसी पर कोई बोहतान नहीं लगाओगे, झूठी बात नहीं बांधोगे। उसने किया भी नहीं और तुमने बोहतान लगा दिया। और फिर इसके बाद फरमाया कि किसी शरई हुक्म में नाफरमानी भी नहीं करोगे। इसके बाद हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि जिसने ये वादा कर लिया है और ये वादा वो वफा भी करे, तुम में से जिसने भी इस वादे को जो मेरे साथ अभी ये कर रहा है और उसने बैत की है इन चंद बातों के ऊपर, जिसने पूरा किया इन बातों को, तो फरमाया उसका अजर अल्लाह तबारक व ताला पर है। वमन असाब मिन ज़ालिका शैया, और जो इन गुनाहों में से कुछ कर बैठे और उसको दुनिया में ही उसकी सजा मिल गई तो ये उसके लिए कफारा बन जाएगी, और जिसने इन गुनाहों में से कोई गुनाह कर लिया और अल्लाह तबारक व ताला ने उसके गुनाहों के ऊपर पर्दा डाल दिया, उसे छुपाए रखा तो उसका जो मामला है फरमाया अल्लाह के हवाले होगा, इंशाअ अगर रब चाहेगा तो उसे माफ फरमा देगा, और अगर अल्लाह चाहेगा तो फआकबहु तो उसे वो अजाब भी देगा। ये अल्लाह के नजदीक मामला होगा, वही जानता है कि उसके साथ क्या करना है। तो हजरत उबादा बिन सामित रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं फबायअनाहु अला ज़ालिक, तो हमने इन सब बातों पर कमोबेश ये 6 बातें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी, हमने इन बातों के ऊपर मुस्तफा जान रहमत के हाथ पर बैत की। फबायअनाहु अला ज़ालिक। मदनी चैनल के नाजरीन, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजरीन से उस वक्त 6 चीजों पर बैत ली थी, और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने बैत करके उन गुनाहों के तर्क करने का मुस्तफा जान रहमत की खिदमत में सच्चा वादा फरमाया था, अज़्म मुसम्मम किया था, जिनमें से पहली बात यह थी कि शिर्क नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे दूसरी बात थी, और तीसरी हम बदकारियां नहीं करेंगे, और चौथी अपनी औलाद को मुफलसी की वजह से या अपनी लड़कियों को आर की वजह से, शर्मिंदगी की वजह से कत्ल नहीं करेंगे, किसी पर तोहमत नहीं लगाएंगे, किसी हुक्मे शरा की हम नाफरमानी नहीं करेंगे। इनमें से जो पहली बात बिल्कुल वाजे है कि शिर्क नहीं करेंगे, और शिर्क के माना यह है, शिर्क की तारीफ यह है कि अल्लाह तबारक व ताला के सिवा किसी दूसरे को खुदा मान लेना, या इबादत के लायक उसे समझना, या अल्लाह तबारक व ताला की जो सिफात खासा है उनमें किसी को शरीक ठहराना, यह शिर्क है। अगर देखा जाए तो 3 बातें बिल्कुल वाजे नजर आती हैं। एक तो यह है कि अल्लाह तबारक व ताला की तरह किसी को वाजिबुल वजूद मान लेना, यह एक बात है, इसे भी शिर्क कहते हैं। यह कि अल्लाह तबारक व ताला के सिवा किसी को खालिक मान लेना, और तीसरी बात यह कि अल्लाह तबारक व ताला के सिवा किसी दूसरे की इबादत की जाए, ये 3 बातें शिर्क में दाखिल हैं, और उलमा ने इसकी तारीफात को बयान फरमाया। मेरे हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इस हदीस मुबारक में इसी बात से मना फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। शिर्क बहुत बड़ा गुना है। कुरान में फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिक। कुफर से नीचे जो गुनाह होंगे रब उनको चाहे तो माफ फरमा देता है, लेकिन जो शिर्क है इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही, अल्लाह तबारक व ताला शिर्क को माफ नहीं करता, और फरमाया ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। इन शिर्क लज़ुल्म अज़ीम, और फरमाया इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना व मअवाहु नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। बेशक जो अल्लाह का शरीक ठहराए तो अल्लाह तबारक व ताला ने उस बंदे के ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है, उसका ठिकाना दोजख है, उसका ठिकाना जहन्नम है, और जालिमों का कोई भी मददगार नहीं होता। इसी तरह दूसरी जो बात है वो है चोरी करना। चोरी ना करने पर मुस्तफा जान रहमत के हाथ पर उस दिन इन सहाबा इकराम अली मर्दवान ने बैत की थी, वादा किया था, अहद किया था कि हम चोरी नहीं करेंगे। चोरी के बारे में मेरे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान इबरत निशान समाज फरमाइए। फरमाया जिसने कोई शय चोरी की कयामत के दिन वो बंदा इस हाल में आएगा, उसकी गर्दन में आग का तोख होगा, और जिसने हराम की कोई शय खाई तो उसके पेट के अंदर आग को भड़का दिया जाएगा। हराम की शय खाई, चीज खाई, पेट में आग भड़क रही है, और अगर कोई चीज चोरी की है तो आग का तोख बनाकर उस बंदे के गले में डाल दिया जाएगा, और वो जिस वक्त अपनी कब्र से उठेगा, हदीस में फरमाया सारी मखलूक उसकी भयानक आवाज सुनकर कांप उठेगी, यहां तक कि खुदाए अहकमुल हाकिमीन अज़्ज़ा वजल्ला ने मखलूक के दरमियान जो फैसला फरमाना है वो फैसला फरमा देगा। इस दौरान उनके पेट में आग भड़कती रहेगी और आग का जो तौक है उसके गले में रहेगा। मेरे हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फाला ज़ालिका खला रिबकत الاسلام من عنقه فإن تاب تاب الله عليه। फरमाया अगर किसी भी शख्स ने चोरी की, चोरी का फेल किया, तो बेशक उसने गोया इस्लाम का जो पटा है वो अपनी गर्दन से उतार दिया। रिबकत الاسلام من عنقه, अपनी गर्दन से इस्लाम का पटा खला उसने उतार दिया। फिर अगर उसने तौबा कर ली, तौबा का रास्ता खुला है मदनी चैनल के नासिरीन। इंसान को चाहिए कि शर्मिंदा हो जाए, गुनाहों पर शर्मिंदा, वो गुनाह कोई भी हो, मरने से पहले, मौत से पहले शर्मिंदगी जरूरी है। फाइन तौबा, फिर अगर उसने अल्लाह से तौबा कर ली, सच्चे दिल से हद कर लिया, तौबा तुन नसूह ले आया, आइंदा कभी गुनाह नहीं करूंगा, पक्की सच्ची तौबा कर ली, ताब अल्लाहु अलैहि, तो रब उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। और तीसरी बात मदनी चैनल के नासिरीन, ये है कि बदकारी करना, यकीनन ये जो बदकारियां हैं ये माल को खत्म कर देते हैं। इतना बड़ा वबाल है, माल आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो जाता है और चेहरे पे जो नूर है वो मिटा दिया जाता है और ऐसा शख्स जहन्नुम में दाखिल किए जाने का हकदार होता है। अल्लाह तबारक व ताला इस बुरी आफत से भी हम सबको महफूज फरमाए। मदीन चैनल के नाजरीन, शिर्क से बड़ा गुनाह क्या है, मा मिन ज़म्बिन बाद शिर्क अअज़म इंदल्लाह मिन नुतफतिन वदअहा रजुलुन फी रहम ला यहिल्लु लहू। फरमाया शिर्क के बाद अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक कोई गुनाह उस नुतफे से बड़ा नहीं है जिसको आदमी उसके असल मकाम से हटकर, जहां शरीयत ने इजाजत दी है उस मकाम से हटकर किसी और जगह पर रखता है। फरमाया वो जगह के जो इसके लिए हलाल नहीं उस जगह पे रख देता है। तो फरमाया शिर्क के बाद यह सबसे बड़ा गुनाह है। याद रखें, बदकारी कबीरा गुनाह है और ऐसा शख्स दुनिया और आखिरत में बदबख्त है। अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी किताब में मुतअद्दद मकामात पर इससे ममानत फरमाई। फरमाया वला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फाहिशा, बिल्कुल वाज़े तौर पर मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यज़्नी ज़ानी हीन यज़्नी, कि बदकारी करने वाला जब बदकारी में मसरूफ होता है तो यह मोमिन नहीं रहता, यानी अल्लाह की रहमत से यह बंदा दूर हो जाता है और उसके अजाब का हकदार बन जाता है। अल्लाह करीम इस मजमूम वस्फ से हम सबको महफूज फरमाए। और तोहमत लगाना, कि इस हदीस मुबारक में तोहमत लगाने से मना कर दिया गया कि किसी पर ना हक तोहमत ना लगाई जाए। बदकारी की तोहमत लगाने वाला ऐसे शख्स को काजिफ कहा गया है और यह सख्त कबीरा गुना है। किसी मुसलमान को तोहमत लगानी यह हराम कतई है, खुसूसन माजल्ला अगर तोहमत बदकारी की हो जिस पर कुरान अजीम ने फरमाया, यईज़ुकुमुल्लाह अन तऊदू लिमिस्लिही अबदा इन कुंतुम मुमिनीन। फरमाया अल्लाह तुम्हें नसीहत फरमाता है कि अब ऐसा ना करना अगर ईमान रखते हो। बदकारी की तोहमत लगाने वाले को शरीयत मुताहरा ने 80 कोड़े लगाए जाने का हुक्म दिया है और हमेशा के लिए इसकी गवाही को मर्दूद करार दे दिया, यानी काबिल कबूल नहीं होगी। अल्लाह तबारक व ताला ने इसका नाम फासिक रखा। यह सब अहकाम हर मुसलमान के मामले में है, अगरचे उससे कोई रिश्ता अलाका असलन न रखता हो। कोई भी मुसलमान, ऐसा नहीं है किसी दोस्त अहबाब पर तोहमत लगा दी, ऐसा नहीं है कि किसी रिश्तेदार पर तोहमत लगाई तो फिर यह होगा, किसी जानने वाले पर तोहमत लगाई तो तब यह होगा, जानने वाला ना भी हो लेकिन हो मुसलमान तो सजा मिलेगी, भुगतनी पड़ेगी। और औलाद को नहक कत्ल करने से मना किया है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا. اور غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک انہیں قتل کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. تفسیر صراط الجنان میں اس آیہ مبارکہ کے تحت یہ ہے کہ اس رکوع میں متعدد کبیرہ گناہوں کے بارے میں واضح طور پر حکم دیا ہے کہ ان سے بچو. چنانچہ یہاں بیان کردہ پہلا گناہ اولاد کو قتل کرنا ہے. زمانے جاہلیت میں فرمایا بہت سے اہل عرب اپنی چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. امیر اس لیے دفن کرتا، اس لیے زندہ دفن کرتا، ان کو قتل کر دیتا کہ کوئی ہمارا داماد نہ بنے اور ہم ذلت و آر نہ اٹھائیں. اگر داماد بن جائے گا تو ہمیں ذلت ہوگی کہ ہماری بیٹی ان کے گھر چلی گئی. تو داماد کی وجہ سے آر محسوس کرتے تھے، ذلت محسوس کرتے تھے، اس وجہ سے قتل کر دیتے، زندہ درکور کر دیتے. جبکہ غریب اور مفلس آدمی ایسا فعل کیوں کرتا تھا؟ امیر تو کرتا تھا لیکن غریب ایسا کیوں کیا کرتا تھا؟ فرمایا غریب اپنی غربت کی وجہ سے کہ انہیں کہاں سے کھلاؤں گا، تو فرمایا نحن نرزقهم وإياكم، انہیں بھی رزق ہم دیں گے اور تمہیں بھی رزق ہم دیں گے. رزق کا ذمہ تو اللہ کا ہے. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، اللہ انسان کو رزق دیتا ہے، یہ اس کا ذمہ ہے، روزانہ ہی ملتا ہے. وہ کہاں سے دیتا ہے انسان کو علم نہیں، لیکن اس کے ذمہ ہے، وہ بندے کو عطا فرما دیتا ہے. ہر کوئی کھا رہا ہے، ہاں یہ ہے کہ کمی بیشی تو ہوتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ رب کائنات عطا ضرور فرماتا ہے. اور دونوں گروہوں کا یہ فعل حرام ہے، خواہ وہ امیر ہے یا غریب ہے. اور قرآن و حدیث میں دونوں کی مذمت کو بیان کیا گیا، البتہ یہاں بطور خاص فرمایا غریبوں کو ان کی اس حرکت سے منع فرما دیا گیا. اور جو چھٹی بات ہے وہ ہے نیک کام میں حکم عدولی نہ کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا. تو مدنی چینل کے ناظرین، ان چھ باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ بیعت صحابہ کرام علی مردوان سے مصطفیٰ جان رحمت نے لی ہے، اور آپ نے یہ بیعت لی ہے تو ان ڈائریکٹ یعنی ان کے واسطے سے گویا کہ یہ بیعت ہم نے بھی کی ہے کہ ہم بھی ان سب کاموں سے بچیں گے. اللہ کریم ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے. آمین بجاہ النبی امین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم.
ایمان ہے قال مو